नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रखंडों में खुलने वाले टिप्पणी कॉलेजों में 9152 नए पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। कोसी और गंडक परियोजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर भारत और नेपाल की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रही है। और काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, आम, लीची और मूंग की फसल को भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित होने वाली बैठक में सभी डीएम और एसपी भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे, जबकि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला में शामिल होने का निर्देश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग सुधार और जिलावार प्रदर्शन की गहन समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के 208 प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेजों में 9152 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रत्येक महाविद्यालय में 44-44 पद सृजित किए गए हैं।
सभी डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अधिभूत इकाई के रूप में मान्यता, उनके औपबंधिक संचालन, प्रति विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 पदों का सृजन और महाविद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों में जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्यों के लिए प्रति महाविद्यालय 50 लाख की दर से 104 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी।
संवाददाता सम्मेलन में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर केवल बिहार के लोगों को ही देने का फैसला किया है।
25 लाख से 50 करोड़ तक के जो सिविल कार्य हैं, उसमें स्थानीय संवेदकों को अधिमानता देने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। इसमें दो चीज सुनिश्चित किया जाएगा, रख रखाव या नया निर्माण करने वाले ऐसे संवेदक जिनके कार्य की कुल राशि 25 लाख से 50 करोड़ के बीच में हो, उसमें बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे या बिहार की जो रजिस्टर्ड फर्म्स होंगी या बिहार में जो रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, साथ ही ऐसी कंपनियां जिनके शेयर होल्डर कम से कम 51% बिहार के मूल निवासी होंगे, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे ही लोगों को ये कार्य आवंटित किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 23,165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जन भागीदारी से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य के निजी प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से जुड़ेंगे।
गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर सीसीटीवी लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसीज उनको चला रही होंगी, उनको सीसीटीवी लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा और एक सीसीटीवी उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना के करदनी बाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कुल 63 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। कोसी और गंडक परियोजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर भारत और नेपाल की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रही है। यह बैठक कल तक चलेगी। साथ ही दोनों देशों से होकर बहने वाली नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान को लेकर 2 मई को संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने दानापुर नगर परिषद की मुख्य पार्षद शिल्पी कुमारी को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर नामांकन के दौरान गलत ब्यौरा देने का आरोप है। वहीं भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायालय की ओर से सजा सुनाए जाने पर आयोग ने मसौढ़ी नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 के पार्षद शंभू कुमार की सदस्यता को रद्द कर दिया है। आयोग ने भोजपुर जिले के बिहार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता और भभुआ नगर परिषद के मुख्य पार्षद विकास कुमार तिवारी को भी अलग अलग कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया है। हड़ताल पर चल रहे पंचायत सचिवों और सरकार के बीच वार्ता असफल हो गई है। पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह के साथ पंचायत सचिवों के प्रतिनिधियों की वार्ता में सरकार 5 में से 4 मांगों पर सहमत हो गई। हालांकि अंतर जिला तबादले पर सहमति नहीं होने के कारण पंचायत सचिवों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 12 लाख राशन कार्डधारी परिवारों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। जांच में अयोग्य पाए जाने पर इनके नाम सूची से हटाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 57 लाख राशन कार्डधारी परिवारों का नाम संदिग्धों की सूची में डाला था। इसकी जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में और 18 लाख अपात्र लाभुक परिवारों के नाम सूची से बाहर किए जाएंगे। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में 966 शिक्षकों की जबकि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 273 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। बिहार लोक भवन ने विश्वविद्यालयों में प्रभारी कुलपतियों द्वारा नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है। लोक भवन ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि कार्यवाहक या अस्थायी रूप से नियुक्त कुलपति नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। वे केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक काम का ही निर्वहन करेंगे। यदि विश्वविद्यालय हित में कोई निर्णय अपरिहार्य हो तो कुलाधिपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। आंधी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और कटिहार समेत कई जिलों में घंटों तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित रही। रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही मूंग की फसल की भी क्षति हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत 25 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। विभाग के अनुसार राज्य में 4 मई तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू के आसार को देखते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में 3000 बेड लू प्रभावितों के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक बेड आरक्षित किए गए हैं। पीएचसी में 4 जबकि अनुमंडलीय, रेफरल और जिला अस्पतालों में 5-5 बेड लू प्रभावित मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान का कल पटना में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। रामेश्वर पासवान सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। अपहरण और फिरौती से जुड़े मामले में जमुई पुलिस द्वारा गिरफ्तार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के 2 सहायक अवर निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में एएसआई सुजीत कुमार और दिलीप कुमार शामिल हैं। ये दोनों नवादा के पकड़ी बड़ावा थाने में पदस्थापित थे। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के रूपस कॉलोनी स्थित एक गोदाम में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर 1,25,00,000 रुपए की प्रतिबंधित दवा जब्त की है। औषधि निरीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि जब्त की गई प्रतिबंधित दवाओं का नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं इसी थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोड़ के पास उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक डाक पार्सल पिकअप वैन से 193 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के फुष्टी कला गांव में एक तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। कैमूर जिले के कुटनी थाना क्षेत्र स्थित रमकरपुर पुल पर एक चारपहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के देवहड़िया गांव के रहने वाले थे। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुन्ना मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आकाश साह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है बंगाल में कड़ा मुकाबला, तमिलनाडु असम में दोहराव के आसार। प्रभात खबर ने लिखा है एग्जिट पोल का दावा, पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा, असम में हैट्रिक और पुद्दुचेरी में वापसी। दैनिक जागरण की सुर्खी है ईओ की हत्या के 12 घंटे के अंदर आरोपित रामधनी ढेर। दैनिक भास्कर ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को तरजीह देते हुए लिखा है 50 करोड़ तक का टेंडर अब केवल बिहारी को ही मिलेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं आंधी बारिश ने दिलाई भीषण गर्मी से राहत। आज अखबार लिखता है कार्यकारी कुलपतियों के नीतिगत निर्णय पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रखंडों में खुलने वाले टिप्परी कॉलेजों में 9,152 नए पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। कोसी और गंडक परियोजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर भारत और नेपाल की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रही है। और काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, आम, लीची और मूंग की फसल को भारी नुकसान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।